श्लोक संख्या 17। नान्यते कामे राजन् मदन्या जगदीश्वरात् नैना प्राप्नोति वै विद्वान् यावान् अर्थ प्रतिग्रह। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नाम नहीं अन्य अन्य कुछ ते तुमसे काम ये याचना करता हूँ राजन हे राजा बदन्या जो इतने दानी है जगत ईश्वरार सारे ब्रह्मांड के राजाओं से नाम नहीं एनह दुख प्राप्नोति प्राप्त करता है वै निसंदेह विद्वान विद्वान यावत जिसे जितना चाहिए प्रतिग्रह अन्यों से दान लेना। अनुवाद ये समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपने आवश्यकता अनुसार दान देता है तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। तात्पर्य कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान रामों ने अप्रत्यक्षता फली महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है जिसे वह अपव्यय करता है। ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान की संतान होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, क्योंकि वह आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या क्षत्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि वे अन्नों पर पलते हैं। इस तरह वामन देव आदर्श याचक थे क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपनी असीम पदचाप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं जिसमें ऊर्ध अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित हैं। ओम अज्ञानस्य निरंजस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्ण आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रसंग चल रहा है कि बलि महाराज वामन देव के पास आए हैं और उनसे दान की याचना कर रहे हैं। ये सब वो कर रहे हैं बलि महाराज का भी उद्धार करने के लिए और देवताओं की सहायता करने के लिए। और इससे पहले 16 श्लोकों में बलि महाराज से वामन देव जी उनके पूरे कुल का गुणगान करते हैं कि उनके दादा परदादा कितने महान लोग हैं, कैसे उन्होंने बड़े बड़े दान किए। और बलि वामन देव अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि एक याचक को एक भिक्षुक को कैसे होना चाहिए। प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं एक आदर्श भिक्षुक है, कैसे दान मांगना चाहिए और कितना दान मांगना चाहिए। और बलि महाराज भी अपने आचरण से दिखाएंगे कैसे देना चाहिए और कितना देना चाहिए। जो इस पूरे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने एक पूरे समुदाय के लिए जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं, जो ब्रह्मचार्य या संन्यास आश्रम में स्थित भक्त हैं, उन सबके लिए सुंदर आदेश दिए हैं। इस वर्णाश्रम में पूरे समुदाय में हर वर्ण और हर आश्रम के लोग होते हैं, भक्त होते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना। और सबको एक दूसरे के लिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए सबको एक दूसरे की सहयोग की आवश्यकता है। वो सहयोग कैसे करना है इस तात्पर्य से हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जो गृहस्थ आश्रम में विशेषकर भक्त हैं उनका मुख्य जो कार्य रहता है इस वर्णाश्रम में सहयोग का, एक अतिथि सत्कार और दूसरा दान देना। बलि महाराज ने दिखाया कैसे अतिथि सत्कार करते हैं। वामन देव आए उनके यज्ञशाला में, बहुत सुंदर ढंग से उनका सत्कार किया और फिर बोला मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और अब सेवा के रूप में जो बलि वामन देव मांगेंगे बलि महाराज उनको पूरे हृदय से देंगे। तो यहां पर विश्वाचार्य ठाकुर पाद अपने श्लोक की टीका में लिखते हैं कि यहाँ पे जो वामन देव बलि महाराज को कह रहे हैं कि नैना प्राप्नोति वही विद्वान यावत प्रतिग्रह, जितना आवश्यकता उतना ही मांगूंगा और अगर विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वो पाप के कर्मों में नहीं लगता। अपनी आवश्यकता से अधिक दान मांग के उसका उपयोग करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो विश्वाचार्य ठाकुर पाद बता रहे हैं कि वामन देव उनको इंगित कर रहे हैं कि मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूं, तुमसे सब कुछ हर लूंगा लेकिन मुझे पाप नहीं लगेगा। मेरी आवश्यकता 3 कदम ही है लेकिन 3 कदम में सब कुछ आ जाएगा लेकिन उसमें मुझे पाप नहीं लगेगा। तो यहां पर लिखा है कि कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह दंडनीय है। तो पाल लिखते हैं कि एक्स्ट्रा वेगन्स वर्ड यूज करते हैं, एक्स्ट्रा वेगन्स इज पनिशेबल। तो जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक पार्षद हैं गोविंद घोष जी चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे और महाप्रभु लीला कर रहे हैं तो भिक्षाटन करते थे, तो महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया तो उनको ऐसा उन्होंने लीला की कि उनके पेट में कुछ ओवर ईटिंग हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक हरा टके जो हरण होती है वो गोविंद घोष लेकर आए, उनको दे दी। अगले दिन फिर महाप्रभु ने प्रसाद लिया, उसके बाद गोविंद घोष ने वही हरा टकी हरण उनको दे दी। तो महाप्रभु ने बोला आज कहाँ से लाए, बोले वो कल लाया था उसे रख लिया था। बोले ब्रह्मचारी होकर संग्रह करते हो, संग्रह नहीं आपके लिए, आपको आवश्यकता थी तो हमने बुद्धि का उपयोग किया, कल फिर आपको आवश्यकता पड़ सकती है तो लीजिए। नहीं है ब्रह्मचारी जो है आप जिस आश्रम है आपको संग्रह करने की आज्ञा नहीं है, अगर संग्रह करने का इतना ही शौक है तो ग्रस्त आश्रम में जाओ। तो गोविंद घोष की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन महाप्रभु ने स्तर स्थापित किए हमारे लिए, स्टैंडर्ड सेट किए और गोविंद घोष जी को ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। और उन्होंने महाप्रभु मैं तो आपका संग, मेरा संग आपको कैसा मिलेगा, और चिंता मत करो मैं ही तुम्हारे घर में अपने अर्श ग्रह की सेवा करना गोपीनाथ जी की। और फिर उन्होंने गोपीनाथ जी की पूजा करते थे और बाद में उनके पुत्र का और उनके पत्नी का भी देहांत हो गया। तो आज भी गोविंद घोष जी का कोई पुत्र नहीं था, तो उनको चिंता थी मेरा श्राद्ध कौन करेगा। तो आज भी गोपीनाथ जी जाते हैं और गोविंद घोष जी का श्राद्ध होता है, भगवान स्वयं श्राद्ध करते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने संग्रह किया, बोले नहीं आप ज्यादा नहीं ले सकते, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, है ना। इसी ढंग से नारद मुनि ने जब मृगारी को बोला कि पाप पूर्ण कार्य मत करो, अधमरे पशुओं को मत छोड़ो, इस धनुष को तोड़ दो, ये तुम्हारे पाप का कारण है। तो वो मृगारी शिकारी थोड़ा हिचकिचा रहा था, धनुष तोड़ो ना तोड़ो, बोले ये तो इससे मेरा पूरा परिवार पलता है। नारद मुनि बोला मैं परिवार पालूंगा, तुम धनुष तोड़ो। तो इतना उनको कॉन्फिडेंस दिला, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। और बाद में मृगारी अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर चला गया, तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करता था, पूरे गांव वाले उनसे मिलने आते थे और कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आते थे। इतना ज्यादा उनके पास खाद्य पदार्थ हो गया कि उनको फूड फॉर लाइफ करना पड़ता था, सबको बांटना पड़ता था। तो बाद में जब बाद में नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ आए उनसे मिलने के लिए, तो नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि अपने शिष्य से पूछा अब कैसा चल रहा है आपका जीवन यापन, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला बहुत ज्यादा आया है, इतने आवश्यकता नहीं है, कृपया खाली दो लोगों के लिए भेजिए बस, आप बहुत ज्यादा भेज रहे हैं, केवल दो लोगों के लिए भेजिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो नारद मुनि जब ये सुना तो नारद मुनि कहते हैं, नारद कहे अच्छा है तुम ही भाग्यवान, ऐसे ही रहो तुम बहुत भाग्यवान कि तुम्हारे पास इतना आ रहा है, लेकिन ऐसे ही रहो, जो आ रहा है बांट दो। तो जो ब्राह्मण है अगर ज्यादा आता भी है तो अपने पास नहीं रखता, अपनी तृप्ति के लिए उसको बांट देगा। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्स्ट्रा वेगेंस इन ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्चा करना अपने आहार निद्रा भय मैथुन में, ये हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रभुपाद कहते हैं जो अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें वो व्यक्ति धीर नहीं रह सकते, वो अधीर है। और इस एक्स्ट्रा वेगेंस के कारण, इस ज्यादा अपव्यय के कारण व्यक्ति अंतर्मुखी भी नहीं हो पाता, वो हमेशा बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहता है। तो इसलिए एक साधक के लिए आवश्यक है जो आध्यात्मिक पथ पे है कि वो एक्स्ट्रा वेगेंट ना हो, बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं इन शरीर की आवश्यकताओं के ऊपर। और विशेषकर जो वैराग्य आश्रम में है भिक्षुक है, उनको तो जितना चाहिए अपनी आवश्यकता के लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। हालांकि शरीर की आवश्यकताएं लगता है कि हम मन ये कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको पूरा करो, लेकिन उसको संयमित रखना ये तपस्या है, और इस तपस्या का पालन करना ही भक्तों का विशेष कर्तव्य है। और इस तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी तपस्या साधक की तपस्या भगवान के लिए फीस्ट है। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बहुत ही सीधे और सरल ब्रह्मचारी, अपने हमेशा वो कपड़े का एक थैला लटका के रखते थे, घर घर जाके भिक्षा करते थे, बहुत ही दरिद्र अवस्था में रहते थे और सब लोग उनको एक भिखारी समझ के ज्यादा उनकी अवहेलना करते रहते थे, लेकिन उनको कुछ भी पीड़ा महसूस नहीं होती थी, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु रहते थे और मुख पे हरि का नाम रहता था, और कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं गरीब हूं कुछ खाने को नहीं है। पूरा दिन भिक्षाटन करने के बाद जो प्राप्त होता था भगवान को भोग लगाते थे और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। तो शिवा सांगन में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नृत्य करते थे, संकीर्तन करते थे, तो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी भी उसमें भाग लेते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वैसे तो भक्त के रूप में रहते थे, लेकिन कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाते थे कि वो ही स्वयं कृष्ण है। तो एक बार शिवा सांगन में वो विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए और सब भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे थे, और शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी बहुत ही आनंद में नृत्य कर रहे थे, जिसको देखे सब भक्त बहुत प्रसन्न थे और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने महाप्रभु ने शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को इशारा किया, पास में आओ। तो शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी पास में गए तो महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे सनातन सेवक हो और हमेशा जन्मों जन्म गरीब अवस्था में ही रहते हो, दरिद्र ही रहते हो। तुम भिक्षाटन करते हो, मुझे भोग लगाते हो, मैं तुम्हारे भोग को स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम अपने स्वेच्छा से मुझे नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लेता हूं। जैसे कि जब तुम सुदामा थे तो यही शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में सुदामा थे, और तुम मेरे लिए चिड़वा लेकर आए थे और देने में हिचकिचा रहे थे, मैंने तुमसे जबरदस्ती लिया और रुक्मिणी ने मुझे रोका खाने के लिए। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के बैग में हाथ डाल दिया और टूटे फूटे चावल तो उसको खाना शुरू कर दिया। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी कह रहे, ये आपके लिए नहीं है, ये तो बहुत ही खराब क्वालिटी के है। बोले, नहीं नहीं, तुम लेके आयो, मेरे लिए यही फीस्ट है। वो खा रहे थे और शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं हमेशा शाश्वत रूप से तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, जब तुम खाते हो तो मैं खाता हूं, और जब तुम भिक्षा के लिए जाते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ये है। तो अगर भक्त लोग जो भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं और अपने शरीर की आवश्यकताओं पे ज्यादा अपव्यय नहीं करते, कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जैसे सुदामा के लिए भी अक्सर जो ब्राह्मण होते हैं वो दरिद्र अवस्था में रहते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रह सके। लेकिन कोई पूछ सकता है कि सुदामा को भगवान ने फिर इतना ऐश्वर्य क्यों दिया? उनको दरिद्र अवस्था में रखना था क्योंकि इस भौतिक ऐश्वर्य से हमें कृष्ण का विस्मरण हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक में लिखते हैं कि जब सुदामा को ये सारे ऐश्वर्य प्राप्त हुए तो सुदामा की इच्छा नहीं थी, सुदामा की केवल यही इच्छा थी, मैं कहीं कृष्ण को भूल ना जाऊं, मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहूं, मेरे भक्तों का संग चाहिए। और उन्होंने कृष्ण के द्वारा दिए ऐश्वर्य को केवल प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल अनासक्त भाव से इसको स्वीकार किया। और ऐसा नहीं कि सुदामा को जो है ऐश्वर्य प्राप्त हुए तब ज्यादा प्रसन्न हो गए ना, वो इन सारे ऐश्वर्य मिलने से पहले भी उतने ही प्रसन्न थे जितना कि सब ऐश्वर्य मिलने के बाद वो प्रसन्न थे। भक्तों को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने दिया तो स्वीकार कर लेंगे। अगर जो हमें भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग हम भगवान के प्रचार के लिए करते हैं, भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उस ऐश्वर्य को हमारे भक्ति में बाधा नहीं पड़ता। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत आदेश देते थे अपने शिष्यों को कि जो भी हम धन लाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए उसका बहुत सही उपयोग होना चाहिए, एक एक पैसे का उपयोग बहुत सही होना चाहिए। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण मलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। प्रभुपाद बहुत सख्ती से अपने शिष्यों के साथ पेश आते थे। प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे तो दो प्रोजेक्ट साथ साथ में चल रहे थे, वृंदावन का और मायापुर का। मायापुर के प्रोजेक्ट को देख रहे थे परम पूजनीय जयप्रदा का स्वामी महाराज, और वृंदावन के प्रोजेक्ट को देख रहे थे सुरभि महाराज। तो दोनों के दोनों आए बॉम्बे में प्रभुपाद से कुछ फंड्स लेने के लिए। जयप्रदा स्वामी महाराज को चाहिए था 1.5 लाख रुपए, सुरभि महाराज जी को चाहिए था 2.5 लाख रुपए। तो जब ये दोनों शिष्य आते थे, प्रभुपाद आते थे, पहले बड़ा अच्छा स्वागत करते थे, बिठाते थे, प्रसाद खिलाते थे, सब बढ़िया ठीक है, तो वो भी बड़े रिलैक्स हो जाते थे। फिर बोलते, बोलो क्या चाहिए, फिर एकदम बिजनेस डीलिंग होती थी। जयप्रदा स्वामी महाराज ने बोला मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। प्रभुपाद बोले तुम पैसे ही मांगते रहते, कुछ करते तो हो नहीं, वहां से मुझे खाली फोटो भेजते रहते हो कि सीमेंट आ गई, सेवे आ गया, बिल्डिंग तो कोई है नहीं, है ना, मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, तुम लोगों की तो वो हालत है जैसे कि विधवाएं होती हैं बिना उनमें आ जाती हैं और मैं पालता हूँ, ये क्या कुछ कलेक्शन करते नहीं हो, इतना उनको डांटा और बोले ठीक है दे दो उनको 75,000 रुपये दे दो, चलो चेक काट दे दिए। अब सुरभि महाराज सोचते इनको तो 1.5 लाख है, मेरे को 2.5 लाख है, मैं कैसे देंगे। तो उन्हें बड़े अच्छे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वो प्रेजेंटेशन लाए थे, ये है ये है ये खर्चा ऐसा है ऐसा है। प्रोफाइल इंप्रेस हो गए, रमानंद उनको 2.5 लाख का चेक दे दो, पहला का चेक मिल गया, प्रणाम करके जाने लगे। एक मिनट रुको, ब्रह्मानंद ये बताओ कि हमारे कृष्ण बलराम मंदिर से पंजाब बैंक का जो लोई बाजार में इसका रजिस्टर्ड पोस्ट में कितना खर्चा होगा। उसने बोला जी 75 पैसे। और सोभी महाराज ये बताओ अपने यहाँ से रिक्शा में जाने कितना खर्चा होगा। बोले जी 125 रुपये। बोले 125 रुपये में 75 पैसे, 50 पैसे, चेक वापस दो। हाथ से चेक ले लिया, ब्रह्मानंद इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज। 2.5 लाख रुपए के चेक में 50 पैसे बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि हम सीधा रजिस्टर्ड पोस्ट से यहाँ से बैंक में भेज देंगे, आपको रिक्शा पे जाओगे 125 रुपये खर्च होगा, 50 पैसे ज्यादा क्यों खर्च होगा। ये देखो, ये प्रभुपाद जी की ये मानसिकता थी। 50 पैसे प्रभुपाद कैसे बचाते थे। प्रभुपाद के पास कोई चिट्ठी आती थी, एनवलप आता था, तो उस एनवलप को खोलते थे बड़े ध्यान से, चिट्ठी निकाली, उस एनवलप को फेंकते नहीं थे, उस एनवलप का जो पिछले हिस्सा था उसको पूरा उसमें लिखने के लिए यूज करते थे, एक कागज भी वेस्ट नहीं करते थे। और उनके पास एक वेइंग स्केल था जो कि डाकखानों में होता है, तो कोई भी चिट्ठी खुद भेजनी होती थी तो देखते थे कितना कितने पैसे की स्टैंप लगेगी। अगर 2 कागज की चिट्ठी हो गई और स्टैंप का रेट बढ़ गया तो 1 कागज में चिट्ठी पूरी कर लेते थे। 25-25 पैसे बचाने के लिए प्रभुपाद देखते थे कृष्ण का पैसा है कितना, इसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। ये हमें आ जाता है, ठीक है कृष्ण है, धन बरस रहा है चारों तरफ से, नहीं, उसका उपयोग केवल कृष्ण की सेवा के लिए, एक एक धन का इतना अच्छा उपयोग। इसी ढंग से शिला भक्ति श्री रामसर ठाकुर महाराज, वो अपने सज्जन तोषणी पत्रिका में और गोड़िया पत्रिका में जितने भी डोनर्स होते थे उनका नाम लिखते थे, किसी ने 8 आने 4 आने भी दिए उसका नाम लिखते थे। एक पत्रिका में तो अभय चरण डे का भी नाम था कि उन्होंने 1 रुपए का दान दिया, और उसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, उसका भी पूरा विवरण होता था। एक बार 1929 में गौर पूर्णिमा दिवस के दिन उनके एक शिष्य थे वैश्वानंद ब्रजवासी, कलेक्शन करते थे, कलेक्शन से जो पैसा मिला उन्होंने क्या किया, मठवासियों के लिए, अपने ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, छाते खरीद लिए। जब भक्ति सिंह ठाकुर महाराज को पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले जो पैसा पहले आता है उसको पहले जमा करा, और जो पैसा जमा होगा सबसे पहले जो डीटीज हैं अर्च विग्रह है उनकी जरूरत पूरी होगी, उसके बाद जो मठ में रहने वाले भक्त हैं उनकी आवश्यकता को देखा जाएगा कितनी पूरी होगी, जितनी पूरी होगी उसी में काम चलाना, डीटीज की सबसे पहले सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो आपका पास पैसे पहले आया उस पैसे से अपने अपने खर्चे निकाल लिए, नहीं, वो इल्लीगल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पैसा आया अगर वो पहले अकाउंट में जमा होता है तो बन जाती है योग माया, और बिना अकाउंट में जमा कराए खुद खर्च कर दिया वो बन जाती है महामाया। पैसा वही, लक्ष्मी वही है, नहीं अपने खर्च के लिए किया, नहीं पहले जमा कराओ और उसके बाद पहले ड्यूटीज का सारा रिक्वायरमेंट पूरा होगा और फिर भक्तों का। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर महाराज कहते थे कि अगर हम जो भी धन लेकर आते हैं भिक्षा से उसको अगर हम सही तरीके से केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए खर्च करते हैं तो पूरे संसार की जो इंद्र तृप्ति करने की वृत्ति है वो रुक जाएगी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी, हम जब धन इकट्ठा करके लाते हैं केवल कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए होना चाहिए, उससे बाकी लोगों का जो विमूढ़ होकर अपने इंद्र तृप्ति का प्रयास कर रहे हैं उससे वो ऊपर उठ जाएंगे। इतनी शक्ति है भगवान की भक्ति में। और श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर ने बोला कि अगर इतनी कठिनाई से लाए हुए धन का हम गलत उपयोग करते हैं तो हमारा सारा का सारा पूरा मिशन फेल हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा पुजारी लोग हुंडी से पैसा निकालेंगे अपनी पत्नियों के बालों में नारियल का तेल लगाने के। तो ये इतना जिम्मेवारी का ये सेवा है धन इकट्ठा करना और उस धन को सही तरीके से भगवान की सेवा में लगा। जैसे देखते हैं एक बार हम परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी के साथ थे ईश्वर कैलाश मंदिर में, इस सन 2000 के आसपास की बात होगी, मंदिर नया नया बना था, तो जो गेस्ट हाउस था उसके लिए हम जा रहे थे, तो लिफ्ट में मैंने स्पॉन्टेनियसली लिफ्ट में सेकंड फ्लोर प्रेस कर दिया। महाराज ने बोला नहीं सीढ़ियों से जाएंगे, आपको मालूम है एक बार ये लिफ्ट सेकंड फ्लोर जाएगी नीचे आएगी 2 रुपये लग जाते हैं। 2 रुपये का खर्चा पेटली का, चलो सीढ़ियों से चलो, सीढ़ियों से ले गए। तो ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हमारी, ऐसा नहीं कि ठीक है मंदिर में फैसिलिटीज हैं कुछ है कैसे भी हम उपयोग कर लें, पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी ढंग से प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु एक ओहियो यूनिवर्सिटी से इंजीनियर, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बोला नहीं मुझे कॉरपोरेट में काम नहीं करना, तो वो खुद टैक्सी चला के सैन फ्रांसिस्को मंदिर को मेंटेन करते थे, खुद टैक्सी ड्राइवर बन गए। और एक बार इनका टी शर्ट पूरा फट गया, तो भक्तों ने बोला टी शर्ट नहीं लेके आओ अच्छा नहीं लगता हम प्रसाद में जाते हो, तो गए मार्केट में एक टी शर्ट खरीद ली। उन्हें बोला पैसे दो, बोले मैं अपने लिए तो पैसा खर्चता ही नहीं। बहुत बोले अरे आप अपने टी शर्ट ये पैसा दो, बोले पैसा तो कृष्ण के लिए खर्चता हूँ, अपने में कोई पैसा नहीं खर्चता, आप इस प्रसाद ले लो मैं पैसा नहीं दूंगा। वो दुकानदार भी बहुत खड़ूस था, अक्सर वो जयानंद प्रभु इतने स्वाभाविक करते थे कि उनकी बात लोग मान जाया करते थे, प्रसाद देते थे घर के बाद, वो माना नहीं, बोला चलो कोर्ट में मिलना फिर टी शर्ट तो उतारूंगा नहीं कोर्ट में बात करना, कोर्ट में मिलने कोर्ट में चले गए। जज सामने खड़ा था तो जज ने बोला पैसे क्यों नहीं दे रहे, बड़ी मासूमियत के साथ बड़ी सिंप्लिसिटी बोला आई नेवर स्पेंड फॉर माई सेल्फ, कभी किया ही नहीं मैंने अपना खर्चा। उनकी इतनी मासूमियत को देखकर जज ने बोला दुकानदार को जाने दो ना यार खर्च तो आप ही, छूट गया सर। और जीवन के अंत अवस्था में उनको ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर, और उनको लोग भक्त लोग हॉस्पिटल में ले गए, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। और जब भक्त लोग उनको मिलने आए तो देखा कि जयानंद प्रभु बेड पे ही नहीं है, और नजदीक गए तो देखा बेड पे शिला प्रभुपाद जी का फोटो पड़ा है और जयानंद प्रभु नीचे जमीन पे सो रहे हैं। बोले आप जमीन पे क्यों सो रहे, बोलता नहीं है मैं डिजर्व नहीं करता, इतना रॉयल अपने हॉस्पिटल दे दिया, इसमें मैं क्यों रहूँगा, इतना पैसा खर्च क्यों करूँ, मैंने ये सुविधा नहीं ले सकता। तो भक्तों ने जबरदस्ती उठाकर उनको बिस्तर पर रखा, ये नहीं तुम्हें आवश्यकता है। उनके घर वालों ने उनकी इलाज के लिए उनको चेक दिया, वो सारा का सारा चेक उन्होंने सेवा में लगा दिया भगवान के। तो ये चेतना होती है और भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये जो भक्त लोग हैं वो देखते हैं कि सब की सब भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान का है, अपने लिए इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए प्रभु कहते हैं थिंक बिग, अपनी सेवा के लिए थिंक बिग नहीं, भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद के एक शिष्य थे रणधीर, उन्होंने प्रभुपाद से मिले, उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि मैं अपनी आय का 50% दूंगा। प्रभुपाद ने बाद में उनको चिट्ठी लिखी 21 मई 1972 में, आई एम वेरी प्लीज दैट यू ऑफर टू गिव 50% ऑफ योर इनकम, बट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यू कैन गिव 100% ऑल्सो। तो भगवान के लिए मांग रहे भक्त लोग बिल्कुल हिचकते नहीं है, नहीं वो जो धन आएगा उसके अपने लिए इस्तेमाल करने में भक्त लोग बहुत सावधान रहते हैं कि हमसे कुछ भी गलत ना हो जाए। और इसके विषय में भागवतम के 11 स्कंद में बताया गया है कि जो धन हम लेकर आते हैं उसका कुछ भी गलत उपयोग हो जाए, भगवान के लिए किसी ने सेवा में दिया, तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं दत्ताम परेर दत्ताम हरे सुर विप्रयो वृतिम स जायते विभुग वर्षा नाम अयतायुतम। जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति को चुराता है, चाहे वह उन्हें चाहे उस व्यक्ति द्वारा दी गई हो या अन्य किसी के द्वारा, उसे 1 करोड़ वर्षों तक मल के कीट के रूप में रहना पड़ता है। भगवान के लिया गया धन हमें कोई डोनेशन भी देता है और उसका हम थोड़ा सा उपयोग अपने लिए कर लेते हैं, तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं करोड़ों जन्मों तक मन का कीड़ा बनना पड़ता है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि सीधा उस लक्ष्मी को लाना, भगवान की सेवा में देना, अपने लिए रंच मात्र भी नहीं। भक्त लोग हनुमान का काम करते हैं, जो लक्ष्मी को भौतिकवादी लोग अपने भोग वृत्ति के कारण उसको भोगना चाहते हैं, वो सीता मैया को उनको उठाकर राम जी के शरण। जब सीता मैया की खोज में हनुमान जी जा रहे थे मंदार पर्वत से, उन्होंने छलांग लगाई और लंका की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक उन्होंने देखा एक पर्वत, सुनहरी पर्वत उनके सामने खड़ा हो गया। ये पर्वत था मैनिक पर्वत, और इसने बोला कि मैं तुम्हारे पिता का मेरे पर बहुत बड़े उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर कार्य किए हैं, मेरी मदद की थी जब इंद्र ने मेरे पर काटे थे, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्यों नहीं तुम इस पर्वत पे कुछ विश्राम करो, अच्छा खान पान करो, उसके बाद फिर आगे निकल लो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज वो ऑफर कर रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी ने बोला नहीं, मैं अपने मिशन में हूं, लेकिन आपने मुझे इतना आदर दिया है। हनुमान जी आए, थोड़ा देर पर्वत पे बैठे, छुआ, फिर आगे निकल गए। अपने लिए कुछ नहीं, सीधा गए पहले लंका में और सीता मैया को वापस लेकर आए। इसलिए भक्त लोग जब जाते हैं बाहर, लोग बहुत सुंदर अवसर है कि वो उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाए। भक्ति सांसद ठाकुर महाराज बताते हैं कि जो भक्त लोग भिक्षा मांगने जाते हैं, इससे वो बहुत विनम्र होते हैं और बहुत शुद्ध होते हैं, और अपने सही आचरण से उनको मौका मिलता है कि दूसरों को भी शुद्ध करें। अगर उनका धन हम सही जगह से सही तरीके से लाकर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनका भी बहुत शुद्धिकरण होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत को कहते हैं कि ये मनी कलेक्शन नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सोल्स है। वी आर नॉट कलेक्टिंग मनी, वी आर कलेक्टिंग सोल्स। सो आप जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम सब लोग मिलकर जाते हैं, लोगों से हम धन लेकर आते हैं, तो अगर हम सही चेतना में जाएंगे और सही तरीके से उनको लेकर आएंगे और भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये सारी जीवात्माएं को भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ कर्तव्य जो कि भिक्षाटन करके जाते हैं, और उनके लिए विशेष कर चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है, भला ना खाई गो, भला ना पहने गो, ग्राम्य कथा ना करे गो, ग्राम्य कथा ना सुने गो। कि जो भिक्षुक है उनको ये नहीं कि अपने लिए बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा कपड़े डालने हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रचार में जाएं फटे हुए कपड़े डाल के। अक्सर ऐसा भी इंप्रेशन रहता है कि जो मंदिर वो टूटा फूटा है, वो लगता है बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, और जो भक्त ने फटे कपड़े डाल रखे हैं ये बड़ा विनम्र भक्त है ना, और किसी ने बड़ा अच्छा मटका सिर डाला हुआ है ये बड़ा भोगी भक्त है। ऐसे हमें बाहर से भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। हम लोग प्रचार का हमारा आंदोलन है तो बहुत अच्छे कपड़े हमारे होने चाहिए और अच्छे ढंग से आगे प्रचार करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें प्रचार के क्षेत्र में डायरेक्ट नहीं है तो धन को बहुत ही मिनिमम से मिनिमम। एक बार जगन्नाथ बाबा जी महाराज जा रहे थे, उनके सेवक बिहारी उनको उठा के जाते थे टोकरी पे, तो किसी एक व्यक्ति ने उनको एक सिक्का दे दिया। उन्होंने सिक्को को लिया, कुछ देर के बाद बिहारी को बोलते भाई वापिस ले जाओ, वापिस लेके उन्होंने सिक्के को वापिस दे दिया। अरे भैया मैं तो कुछ देर भी इसका बोझ नहीं उठा पाया, तुम पूरा जीवन तुम इसका बोझ उठा रहे, थके नहीं इस धन का? सिक्का वापिस दे दिया, मैं नहीं उठा सकता इसको। इसी ढंग से सनातन गोस्वामी जब जेल से निकल कर जा रहे थे महाप्रभु से मिलने, तो उनके साथ में एक साथी था ईशान। ईशान के पास 8 सोने की मुद्राएं थी, और रास्ते में गेस्ट हाउस में रुके, वो जो गेस्ट हाउस का मालिक था जादूगर था, उसको पता चल गया उनके पास कितनी सोने की मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बोला जो है ले लो, हमारी मदद करो इस पहाड़ी को पार करने में। तो ईशान से पूछा कितनी सोने की मुद्राएं लाए, बोले 7। तो 7 मुद्राएं दे दी। लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए इसने कुछ गड़बड़ की है, बोले कुछ रखे अपने पास? ईशान बोला 1 रखी, चल भाग जाओ यहां से। ये एक मुद्रा भी है, ये मेरे लिए काल यम है, ये मृत्यु के समान है, भाग जाओ। उसको भगा दिया और पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित। तो ये हम दिखाते हैं हमें हमारे महाजन किस ढंग से हमें धन का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जहां एक भिक्षु को जो कि ब्रह्मचार्य या संन्यास आश्रम में है वो भिक्षा लेकर आते हैं, उसके लिए कर्तव्य बताया। साथ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वामन देव जी अप्रत्यक्षता बलि महाराज को भी इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है, कि उन्होंने भी आवश्यकता से अधिक एकत्र करके रखा है। तो जो ग्रस्त आश्रम में है उनका मुख्य कर्तव्य है अतिथि सत्कार और दान देना, और दिखने में ऐसा लगता है कि जो ग्रस्त आश्रम है बाकी 3 आश्रमों का पालन पोषण कर रहा है, उनके लिए वो पूरा पाल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है। एक दान देते समय एक ग्रस्त की क्या मानसिकता होनी चाहिए ये हमें सीखना चाहिए पृथ्वी महाराज से। पृथ्वी महाराज के यज्ञ में जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो पृथ्वी महाराज ने प्रार्थना की कि मुझे भक्तों का संग दीजिए, और भगवान उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दरबार में 4 कुमार प्रकट होंगे। और कुछ समय के बाद 4 कुमार वहां प्रकट हुए। पृथ्वी महाराज ने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया और 4 कुमारों को उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद पृथ्वी महाराज अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणो, मेरे प्राण, पत्नी, बच्चे, घर, घर का साथ सामान, मेरा राज्य, सोना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। सब कुछ मेरा, मेरे घर बार, बच्चे, सोना, जो मेरा कोष है, सब कुछ आपका है। क्यों? इससे पहले वो बोला कि आपने मेरा इतना बड़ा भला किया है कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है वो साधुओं का ही उच्चिष्ट है। तो जो गृहस्थ में राजा कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो क्या है? साधुओं का उच्चिष्ट है। तो वही उच्चिष्ट मैं आपको कैसे दे सकता हूं? प्रभुपाद समझाते हैं, किसी पिता ने अपने बच्चे को अपना जूठा लिया, तो बच्चा उस जूठे को उसी पिता को कैसे वापस कर सकता है? ये जो मेरे पास जो कुछ भी साम्राज्य है वो तो आपका ही उच्चिष्ट है। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति में जो क्षत्रिय राज्य का पालन करते थे वो ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार करते थे, और उनको वो मार्गदर्शन करते थे कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। इसलिए आपने जो मुझे दिया उसमें मैं आपको क्या वापस कर सकता हूं? इसलिए वो आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, चौथे स्कंध के 22वें अध्याय का 46वां श्लोक। स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैव अनुग्रहण अन्नं भुञ्जते क्षत्रिय आदयः। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उल्टा ये नहीं कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय और वैश्यों की कृपा से भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पृथु महाराज कह रहे हैं क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। जो ब्राह्मण दिखने में लग रहा है कि वो भिक्षा मांग रहे हैं, जो भिक्षा में उनको मिल रहा है वास्तव में उन्हीं का ही है। उन्हीं के कपड़े उनको मिल रहे हैं, उन्हीं का धन उनको मिल रहा है, उन्हीं का खाना उनको मिल रहा है, और कुछ नहीं, उन्हीं का ही। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, चूंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव भगवान के प्रत्यक्ष दास होते हैं अतः वे अन्नों पर आश्रित नहीं रहते हैं। ब्राह्मण तो डायरेक्ट भगवान के दास है, या वैष्णव वो दूसरों पर मोहताज नहीं होते, पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होते हैं। वास्तव में संसार की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों की हैं, किंतु वे विनयवश क्षत्रियों या राजाओं या वैश्यों या व्यापारियों से दान ग्रहण करते हैं। वास्तव में सब कुछ वैष्णवों का ही है, ईशावासे इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, और जो वैष्णव है वो भगवान के प्रतिनिधि है। तो वास्तव में सब कुछ भक्तों का ही है, लेकिन भक्त लोग विनम्रता पूर्वक जाके अपने ही धन को भिक्षा में मांगते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गृहस्थों के पास जो धन है वो तो एक बैंकर का काम कर रहे हैं, केवल सेविंग अकाउंट है। और जब वैष्णव उनके पास आए और धन मांगे, उनका कर्तव्य है तुरंत धन देना चाहिए। आप किसी बैंक में जाते हैं, चेक काट के देंगे तो जो काउंटर पे व्यक्ति है वो बहस करता है आपसे, उसको देना ही पड़ेगा, जो पैसे देगा ही देगा। इसलिए जो गृहस्थ में भक्त हैं उनके पास कोई वैष्णव आए कि दीजिए रोहनी बजट करीब 5 करोड़ रुपए, मेरा तो है ही नहीं है, आपका ही है। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रभु जी लाइफ नंबर बनना है, थोड़ा किस्तों में बन जाऊं। इतना मतलब कि भक्तों का एक्सपीरियंस है, अपने संतान के विवाह में करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, बड़े से बड़ा, कोई नहीं, दिखावा के लिए कुछ भी करें। और जो भक्त लोग जाएगा जी एक लाइफ मेंबर बन जाइए, 25-30-35 हजार के लाइफ मेंबर के लिए 2-2 हजार महीना, वो लगता है 3-3 साल तक लाइफ मेंबर ही नहीं बना सकती। शादियों में उठा लेकिन क्या, इतना करोड़ों रुपए खर्चते हैं, वो सोचते हैं हमारा धन है, और भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, क्या साधु जी आपकी माया के पीछे पड़ गए हो, जाते हो यार, आपको शर्म नहीं आती, आप क्या पढ़ो, बैठ के पंडित जी करो, पंडित जी आगे, पंडित जी आगे। एक भक्ति उन्होंने बहुत अच्छा बता रहे थे, ऐसे किसी ने बोला किसी कर्मचारी को, क्या आप साधु जी, क्या पैसे के पीछे, आप भी हमारी तरह ही हो। तो उस भक्त ने उदाहरण दिया, अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो 80 किलोमीटर की रेंज स्पीड लिमिट, आपने 100 पे चलाई, पुलिस वाले ने आपको पकड़ना है तो किस स्पीड पे चलाएगा? बोले 120 पे। बोले हाँ, तुम इतने भाग दौड़ करके पैसा कमाने के लिए, उससे तेज हमें भागना पड़ता है आपको पकड़ने के लिए। अभी आपका धन लेके हम भगवान के सेवा में लगाएंगे। तो ये सारी संपत्ति ब्राह्मणों की है, ग्रस्त को ये सोचना चाहिए। बहुत बड़ा हृदय चाहिए दान देने के लिए, इतनी आसक्ति हो जाती है, सोचते हैं मेरा है, और चिक चिक करके किन किन करके नाम देते हैं। बुरा मत मानिए, बड़ा डर लगता है देते हुए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन कहेगा भी रख लो, ये कर लो वो कर लो। खुल के देना चाहिए, जितना देंगे उतनी कृपा मिलती है, उतना ही, क्योंकि वास्तव में हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, ब्राह्मणों का ही है, वैष्णवों का ही है। आइए दीजिए, मैं तो सेविंग अकाउंट है अपना दीजिए, क्योंकि जो वैष्णवगण है वो हमेशा भगवान के भजन में रहते हैं, उनके पास समय नहीं है धन संभाल के रखे। तो वर्णाश्रम में सुविधा के लिए कुछ लोग खाली धन संभाल के रखेंगे, जब चाहिए वही ले आएंगे, बस कहीं क्यों नहीं खा रहे हैं। इससे रहेंगे तो बिल्कुल अनाशक्त रहेंगे। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में, निराशय चित्तात्मा त्यक्त स्वर परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुरु नाप्नोति नकली वश। निराशय, श्री प्रभुपाद इसके लेक्चर में बताते हैं, निराशय का अर्थ है डिजायरलेस फॉर एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल की खर्ची के लिए डिजायरलेस, शरीर की जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही लेना, बस सादा जीवन उच्च विचार, अपने जीवन को जितना सादा रखेंगे उतना अच्छा है, शरीर की आवश्यकता है जितना कम। और आप सबने देखा ही होगा जब से 16 माला जब शुरू करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, शरीर की आवश्यकता वैसे ही बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो गई, और जितना कम कर सकते हैं कम करें, और जो धन आता है उसके बाद ही धंधा अच्छा चल रहा है, काफी आ रहा है पैसा, तो रोके मत, सब भगवान की सेवा में लगा। कितने लोगों का शुद्धिकरण होगा, उसमें से कुछ रख लिया। भक्ति सिंह ठाकुर महाराज कहते हैं एक होता है शतवित, यानी कि फाइनेंस को मैनेज करने में धोखेबाजी। कैसे धोखेबाजी? बैंक बैलेंस बहुत पड़े हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, चारों तरफ से रेंटल इनकम आ रही है, और खुद घूम रहे एकदम भिखारी बन गए। दिखेगा बड़े सादे भक्त हैं, देखिए जी कितना सादा जीवन है इनका, और भिखारी और भिखारी के तरह कुछ दान दे रहे और भिखारी है नहीं, बस पत्रम पुष्पम फलम दे ये धोखेबाजी है, बहुत बड़ी धोखेबाजी है। उल्टा होना चाहिए, खुद कम से कम भगवान के लिए जितना एक्स्ट्रावेगेंट हो सके हो। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे ट्रांसजेंडर चीटिंग किया और उनको शांतिपुर ले आए, उनको बोला कि गंगा नहीं यमुना है, तो ये गंगा हम को यमुना समझ के उसमें स्नान कर रहे थे, तभी सामने से उदिताचार्य आ गए, तो बोले अरे तुम भी वृंदावन में? उदिताचार्य ने बोला जहाँ आप है वही वृंदावन है। तो बोले नित्यानंद प्रभु धोखा दे दिया, ये गंगा है? बोले नहीं यमुना ही, कोई बात नहीं, चलो आप चलो वापिस चलो, कपड़े गीले हो गए, कपड़े मैं ले आया हूँ आपके लिए, और घर चल के थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल है थोड़ी सी सूखी सब्जी खा लेना, चलो। तो महाप्रभु वो ले गए वो, और जब गए सामने बोला आओ प्रसाद लो, वो इतना बड़ा 56 भोग, और उसको प्रसाद को एक्सप्लेन करने में कृष्णदास कविराज ने 4 पेज लगा दिए चैतन्य चरितमृत में, एक एक आइटम का नाम बता रहे, पूरे 4 पेज लगे, और उसमें बोले खाओ। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कितने सारे भोग, तो महाप्रभु ने बोला किसने बनाया, मैं चाहता हूं उस भक्त के चरणों को अपने सर पे लगा। और फिर जब अद्वैताचार्य ने बोला इसको लो, बोले मैं सन्यासी इतना थोड़ी ग्रहण कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा। अद्वैताचार्य ने बोला मुझसे नाटक मत करो, जगन्नाथपुरी में कितनी बड़ी 56 भोग खाते हैं, चुपचाप आओ। फिर जबरदस्ती अद्वैताचार्य ने बुला के उनको खिलाया। यानी कि महाप्रभु लिख रहे हैं गृहस्थों का कर्तव्य है, भक्तों को बुलाओ। फिर ये फिलॉसफी नहीं लेना कि उन्होंने बोला है, वामन देव जी ने बोला है कि बड़ा कम खाना चाहिए, और ग्रस्तों का कर्तव्य है कि भक्तों की भगवान की सेवा के लिए एक्स्ट्रा पैकेट लो, जितना ले सकते हो लो। अच्छा चलिए दिखा रहे, राघव पंडित जी उनका बगीचे में सुंदर सुंदर फल होते थे, लेकिन अपने गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए दूर से मंगवाते थे टॉप क्वालिटी के नारियल। भगवान की सेवा के लिए टॉप क्लास, खुद की अपने शरीर के पालन के लिए मिनिमम से मिनिमम, ये है आदर्श जीवन, सादा जीवन उच्च विचार। कोई कह सकता है प्रभु जी उच्च जीवन उच्च विचार नहीं हो सकता है ना, हमें करने दो, मैं ऊंचे विचार रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन उच्च जीवन करने दो, क्या कहना आपका? उच्च जीवन उच्च विचार में क्या करते हैं, दोनों ऊंचे रखो, क्यों नीचे करते हो? सादा जीवन उच्च विचार है, उच्च जीवन उच्च विचार संभव है, क्यों नहीं संभव है? उच्च जीवन को मेंटेन करने पहले तो उसको प्राप्त करना मुश्किल है, और किसी को धरोहर में मिल भी गया तो उसको मेंटेन करना इतनी प्रॉब्लम है, उसी में सारी एंग्जाइटी बनी रहेगी। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सादा जीवन उच्च विचार, ताकि पूरी जो शक्ति है समय है वो भगवान के लिए हम लगाए, शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान को जानने के लिए करें। श्री प्रभुपाद बोलते हैं आज के संसार में किसी को बोलो सादा जीवन उच्च विचार, बोले कहां पुरातन काल में ले जा रहे हो, हमें आदि मानव बना रहे हो, है ना, मॉडर्न टाइम्स में आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि यही उनका दुर्भाग्य है, अगर कोई सादा जीवन उच्च विचार के महत्व को नहीं समझता ये उसका दुर्भाग्य है। ये बहुत ये हमारी हम हमारी जीवन शैली क्या है, हर एक व्यक्ति के जीने के लिए कोई फिलॉसफी होती है, कोई बोला नहीं मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है, ये भी एक फिलॉसफी है कि मेरी कोई फिलॉसफी नहीं। हर एक व्यक्ति का जीवन किसी ना किसी सिद्धांत पर आधारित है, और हमारा सिद्धांत होना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार, तभी हम कर सकते हैं। और इसलिए सादा जीवन अगर है, अगर हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं तो उनको अनासक्त भाव से रहें। और प्रभुपाद कहते हैं कितना परसेंट हमें देना चाहिए, 50% मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम 50% है प्रभुपाद कहते हैं, कम से कम। और इसमें क्या है, इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रॉस इनकम के या नेट इनकम के, वैसे नेट इनकम है आप, इसमें कहीं प्रभुपाद ने स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन जो इन्फ्रेंस किया जा सकता है, हाँ यार कुछ में एक्यूमुलेटेड इनकम लिखी है, तो नेट इनकम है बेसिकली, जो हमारे जरूरी खर्चे हैं उसको निकाल दें, भगवान की सेवा के, भोग के, और शरीर के लिए बच्चों की पढ़ाई के इत्यादि की, उसको निकाल के ईमानदारी के साथ, और 50% कम से कम देना चाहिए। आप देखेंगे इससे जीवन बहुत सरल और मधुर होगा। ऐसा जो करता है व्यक्ति वो घर में बैठे हुए सन्यासी है, और जो भी भौतिक जगत के कंटामिनेशन से हम बचे रहेंगे। तो ये अति आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर धन का सही उपयोग ना किया जाए ये अर्थ बहुत बड़ा अनर्थ बन जाता है, और यही अर्थ हमारे लिए लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और यही प्रभुपाद कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंस इन अर्निंग एंड एक्स्ट्रावेगेंस इन स्पेंडिंग, एक्स्ट्रावेगेंस इज द कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रेसेस। ये जितना अपव्यय करना ये हमारे हर दुख का कारण ही यही है। उपदेशात्मक के दूसरे श्लोक में भी प्रभाव लाते हैं, अत्याहार है, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेना, यही सारे समाज की समस्या है। समाज में, संसार में जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सब अत्याहार के कारण, अत्याहार, एक्स्ट्रावेगेंट इन अर्निंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन स्पेंडिंग, है ना। क्या है अमेरिका का कल्चर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, मंडे से फ्राइडे खूब मेहनत करो धन कमाओ, सैटरडे संडे और ज्यादा मेहनत करो उसको खर्च करने में। एक बार वो शुभिलास प्रभु आए थे पीछे, वो बोल रहे थे दीज डेज पीपल स्पेंड मनी टू बाय थिंग्स विच दे डोंट रिक्वायर विद द मनी विच दे डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल हु आर ऑल एनवियस। जो पैसा हमारे पास नहीं है उससे वो चीज खरीदना जो हमें चाहिए नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो हमसे द्वेष करते हैं, क्या फायदा। देख लीजिए सब दिखावे के लिए, उसके लिए हम खेलते हैं, क्रेडिट पर लेते हैं सारा। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि संसार में दो ही लोग सुखी हो सकते हैं, जिसके पास कोई ऋण ना हो और जिसको ऑफिस घर के पास हो। ज्यादा धन कमाने के लिए दूर दूर जगह जाएंगे, और सामान खरीदने के लिए सब क्रेडिट पर लेंगे, किश्तों पर। ऐसे व्यक्ति कैसे सुखी जा सकता है, कैसे वो भगवान के बारे में सोच सकता है, हमेशा चिंता में रहेगा। तो इसलिए जो भी हमें मिलता है भगवान की सेवा में लगाएं, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, लेकिन युक्त वैराग्य के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं फिश बट डोंट टच द वाटर, है ना, मछली पकड़ने जाओ लेकिन ढंग से पकड़ो कि पानी आपको गीला ना कर सके। तो हालांकि भक्तों को बहुत से सुविधाएं मिलती हैं, बहुत से गैजेट्स मिलते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा में। और जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनका भी कर्तव्य है कि खूब अच्छे ढंग से वो दान करें, लेकिन जो भक्तों को दान करते हैं तो इस ढंग से करें कि वो उसका सही उपयोग कर पाए। इसलिए इस कॉन में सिस्टम है कि जो भी आप देते हैं उसका रिसीट काटा जाता है। रिसीट कटने से ये होता है कि सीधा भगवान की सेवा में लगा। कई बार भक्त लोग बहुत भावुक होकर बोलते हैं, नहीं नहीं इसको आप ही रखिए बस, ये आपके लिए। कल परसों एक माता जी आई, बोले बस आपको ही ढूंढ रहे थे, बड़े कवर करके बहुत में क्या है, देखो तो उसे क्या है। बोला उसे कुछ लक्ष्मी थी। मैंने क्यों अभी टीयर देता, भाई टीयर चाहिए नहीं आपसे, टीयर क्यों चाहिए आपसे, आपके लिए बस, आपके लिए। तो भक्त बेचारे कई बार खोली अवस्था में होते हैं, रख लेते हैं, मेरे लिए इतने प्रेम से दिया, दाती पति गणती है, रख लेते हैं। लेकिन वही जो धन है वो उनके पतन का कारण बन जाता है। धीरे धीरे जो धन रखना अपने आप में चेतना को नीचे करता है। इसी ढंग से कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, जो कुछ भी आए, कैश एंड काइंड जो भी आता है, सबसे पहले भगवान के पास जाएगा, वो बन जाता है योग माया। फिर भक्तों की जरूरत के अनुसार उसको मिलता है, वो बनता है। अगर डायरेक्ट कोई इस्तेमाल कर लेता है तो वो रहता है महामाया। तो इसलिए सभी दुखों का कारण ही प्रभुपाद बता रहे हैं एक्स्ट्रा वैगेंस है। और आज का लाइफ स्टाइल है दिखाना कि मेरे पास कितना है, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा वेमेंट होना, और इसीलिए सब लोग दुखी है। अगर सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल रहेगा। हरे कृष्ण।
चैरिटी इज ऑल्सो समटाइम्स गिवन अंडर सम ऑब्लिगेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ सुपीरियर। दीज काइंड्स ऑफ चैरिटी आर सेड टू बी गिवन इन द मोड ऑफ पैशन। और लास्ट में बोलते हैं ओनली चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस इज रिकमेंडेड। तो यदि व्यक्ति ये सोचता है कि वो थोड़ा दे लेकिन मोड ऑफ गुडनेस में दे, तो क्या ये मान सकता सही है?
भक्ति में सब तीनों गुण से परे है। कई बार हम जाते हैं मैराथन में, प्रयास करते हैं, व्यक्ति को वो नहीं मानता, उससे थोड़ी सी जबरदस्ती भी कर लेते हैं, कई बार थोड़ा सा पुश करते हैं स्लाइट, वो मान जाते हैं। तो उसके बाद जो हमें धन प्राप्त होता है हम देखते हैं व्यक्ति बाद में भक्ति में भी जुटता है। लेकिन ये उसमें बताया गया किसी को बहुत ज़्यादा तंग कर देना और वो बिना अनचाहे मन से दे, उतना नहीं करना चाहिए। आज के दिन में थोड़ा बहुत पुशिंग सबको चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वतः ही देते हैं, कुछ ऐसे डोनर्स होते हैं जो आपके खुद भी बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए आपने लिया नहीं, या कुछ और अच्छी सेवा बताइए। ऐसे भी डोनर्स हैं, ऐसे भी भक्त हैं, वो अपने स्वतः से देते हैं। लेकिन हर बार ज़्यादातर एक्सपीरियंस ये है, आप लोगों क्या अनुभव है, अपने आप को देते हैं? आसक्ति इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है प्लेजेंटली, है ना। प्लेजेंटली पुश है तो वो फिर रजोगुण में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। बहुत ज्यादा तंग करेंगे फिर वो दे तो यस वो फिर अनचाहे मन से बिल्कुल दे तो वो ठीक।
दो सवाल थे इकट्ठे। एक फर्स्ट इज लाइक जैसे ही आपने दान देने का पूरा तो ये कल्चर आई गेस हाउ टू कल्टिवेट दिस कल्चर पहला। दूसरा बिकॉज कई बार ये चैरिटी जो है वो एक्सपीरियंस आपने पूछा इस तरीके का भी होता है, जैसे होता है ना जैसे कि आप होटल पर टिप देते हो, जी आज मैं बहुत खुश हूँ, ये लो क्या याद करूँगा। तो इज इट कंसिडर्ड ऑल्सो चैरिटी और इसलिए जस्ट जैसे कि भिखारी होता है वो तो जैसे मर्जी दे दो उठा के ले आते, बट वॉट अबाउट द पर्सन इज गिविंग चैरिटी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने अतिथि सेवा की बात करी, अतिथि सेवा की बात करी, इसका भी प्रैक्टिकलिटीज क्या है? यूजुअली अतिथि सेवा का जो शायद मुझे लगता है जो जनरल डेफिनेशन जो इंटरप्रेट होता है उस तरीके से कि आज मेरे घर में शादी का कीर्तन है तो अतिथि सेवा है, आज क्या कहते हैं ड्यूटीज का बर्थडे तो अतिथि सेवा है, दैट मे बी अ ईयरली इवेंट। व्हाट अबाउट लाइक इज इट एन इवेंट और इज अ कल्चर?
धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही कल्चर है और ये पूरे समुदाय की क्या स्वास्थ्य है, क्या स्थिति है, ये मालूम चलता है, क्योंकि समुदाय में ज़्यादा लोग रस्त में है कि ज़्यादा लोग वैराग्य आश्रम में, ट्रस्ट आश्रम में है, पूरा कॉन्ग्रेगेशन टेम्पल डिवोटीज, पूरा समुदाय मिले कॉन्ग्रेगेशन है. सो ये तो कल्चर है, कैसे हमारी मानसिकता है. और क्यों अतिथि सत्कार और चैरिटी को इतना बल दिया गया है, क्योंकि ये दोनों समय है जबकि हमारी सेवा की भावना की परीक्षा होती है, और इसको कल्टीवेट करने से हम अपने सेवा की भावना को उत्कृष्ट करते हैं. तो नियमित रूप से रेगुलर, क्योंकि ये साधना भक्ति है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा हमारे पास. स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब दिल खुश होगा, चलो आज विवाह है, आज ज्यादा कुछ बोनस मिल गया, चलो कर लेते हैं. स्पॉन्टेनियस तब होगा, ये साधना भक्ति है. तो साधना भक्ति में रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या है, एक ही बात को एक ही समय में नियमित रूप से करते रहना. तो भक्त लोग हैं, कई ऐसे भक्त लोग हैं जिन्होंने मानता है मानसिक मासिक रूप से मेरी सैलरी इतनी है. कितने भक्त लोग इतने ईमानदार हैं, पूरा का पूरा बैलेंस शीट दिखाते हैं, हमारा बिजनेस है इतना है, मैंने सोचा मैं आपको मंथली इतना दूंगा. और कई भक्तों को आप मानेंगे नहीं, मुझे मना करना पड़ता है, प्रभु बहुत ज्यादा हो गया मत दो, कहते नहीं नहीं लेट मी गिव. और ऐसा थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वासुदेव दत्त, दो पैसे की कमाई थी उनके, एक पैसा गंगा की सेवा में, एक पैसा वैष्णव की सेवा में. किसको चिंता हो गई, चैतन्य महाप्रभु को, इसका पालन कौन करेगा इनके परिवार का. उन्होंने शिवानंद सिंह को बुलाया कि तुम इनके अकाउंटेंट बनो, देखो यार दो पैसे कैसे वेस्ट कर देते हैं. तो इसलिए कल्टीवेट करना पड़ता है, ये हमारा मन नहीं मानेगा. सोला माला करने का मन करता है इतना किसी का नहीं करता, करनी पड़ती है. इसी ढंग से दान देना पड़ता है, अतिथि सत्कार करना पड़ता है, और रेगुलर ये साधना भक्ति के अंग को लेकर इसको करेंगे तो हम देखेंगे हमारी सेवा की जो भावना है वो डे डे बाय डे रिफाइन होती जाएगी और हमारी भोगने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी.
आम भाषा में सुनते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, और मोस्टली ये भी देखा जाता है कि भक्त कम होते हैं और बाकी लोग ज्यादा होते हैं. तो जैसे दान करना हो किसी गरीब को पढ़ाई के लिए या वैसे दान, तो वो मान्य होते हैं या अच्छे होते हैं नहीं?
हाँ, नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, ये मायावादियों का सिद्धांत है. बोलते दरिद्र नारायण है ना, इसकी सेवा करें नारायण की सेवा है. जो वैष्णव सिद्धांत है नारायण सेवा नर सेवा, जैसे कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया कि कृष्ण के इंद्र को तृप्त कर देंगे तो सारे समाज में जो व्यक्ति की गलत भावना है वो दूर हो जाएगी. पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सारी शाखाएं हरी हो जाएंगे. वो कह रहे हैं शाखाओं पे पानी डालो तो पेड़ की जड़ मजबूत हो जाएगी. क्या कहना आप लॉजिक से बताइए, पेड़ की शाखाओं में पानी डालेंगे जड़ मजबूत होगी कि जड़ में पानी डालेंगे शाखाएं मजबूत होंगी? बीमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है इस संसार में, आना बीमारी है ना. तो इसको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई बीमार है तो बोलो ये तो क्यों आया पौधी है कभी बोल पौधी का जन्म मृत्यु बड़ा व्याधि भाई है बीमार तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है. हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी सेवा जो हम कर सकें करें. लेकिन ये हमारा वो नहीं बन जाना चाहिए बहाना कि मैंने सारा धन महान दे दिया जब तुम्हें दूंगा नहीं. सबसे प्राइमरी है
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बलि महाराज के विषय में भी कहा गया कि उन्होंने भी आवश्यकता से अधिक जैसे एकत्रित किया हुआ था, तो वो एक राजा थे तो उनको तो मतलब आवश्यकता से अधिक करना ही था क्योंकि प्रजा की सेवा के लिए. इसी मतलब हम देखते हैं रामचंद्र जी के उसमें राज्य में जब वो सीता को वापस लेकर और अयोध्या में आए तो उन्होंने अपने भाइयों को जो है पूरे विश्व पर राज्य करने के लिए आक्रमण करने के लिए भेज दिया. तो एक राजा का तो ये वो है कि इकट्ठा करे या एकत्रित करे या जो भी है, तो इसको कैसे मतलब
राजा क्षत्रिय उसका अर्थ है कि रक्षा करना, लोगों के धर्म की रक्षा. तो अगर वो पूरे पृथ्वी पर राज्य करते भी हैं, छत्रपति राजा है पूरे पृथ्वी पर, ये तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, तो फिर इनका कर्तव्य कि पूरे ब्रह्मांड में लोगों को वैष्णव भी बनाना, ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार वैष्णव के आदेशों के अनुसार राज्य करना.
यहाँ पे बलि महाराज भी तो महाजन
अब आ रहा है, लीला में आएगा अभी तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी. एनक्रोचमेंट है साथ में, क्योंकि जो भगवान के अरेंजमेंट थे, इंद्र राजा थे और उनको अपना लोक मिला हुआ था, उसको छोड़कर उन्होंने हत्याया उसको, तभी तो भगवान उतारिए धर्म की स्थापना करने के, तभी तो आए पूरे यूनिवर्सल मैनेजमेंट से उन्होंने हस्तक्षेप किया, जो उनका अधिकार था उसे बाहर गए उसको लिया।
धन्यवाद। तो जैसे आपने शुरू किया था, आपने गोविंद घोष का एग्जांपल लिया था कि उन्हें हर ठगी जो है वो महाप्रभु के लिए बचाया था, अपने लिए नहीं बचाया था, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनको बोला कि आप ग्रहस्थ में, तो इसको कैसे समझा गया? जैसे कोई
इसको नहीं समझ सकते प्रभु बहुत समझने की कोशिश की, नहीं समझ सकते, क्योंकि महाप्रभु ने छोटा हरिदास को भी एक छोटी सी बात पर रिजेक्ट कर दिया। सो महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी है और ये सारी दोनों लीलाएं मेरे ख्याल से संन्यास के स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हैं, एग्जांपल्स हैं। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड भी नहीं है, बिकॉज शिला प्रभुपाद जी के कई सन्यासी शिष्यों का जो पतन भी हुआ तो प्रभुपाद जी ने उनको दोबारा इंक्लूड किया, तो भक्तों ने बोला कि महाप्रभु ने तो ऐसा नहीं किया, तो प्रभुपाद जी बोला मैं महाप्रभु नहीं हूँ, ये मिशन को आगे बढ़ाना। तो ये महाप्रभु ने अपने एग्जाम्पल दिए हैं कि एक सन्यासी को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर। इसको हम रख सकते हैं ऐसे मापदंड, हाँ जी इस ढंग से हो, आइडियल से आइडियल ये बेंचमार्क है,
लेकिन भी ये आइडियल तो उनके लिए उन अपने से ऐसा होता कि गोविंद घोष अपने लिए रखते तो फिर समझ में आता।
गोविंद घोष को ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने साथ कि भैया आप भी वेला के आश्रम में हो और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मेरे लिए संग्रह करके रखो, मेरे
घोष से निर्भर हो, संग्रह करना ठीक नहीं,
लेकिन भी और ऐसी नहीं कि ग्रस्तों को अलाउड है खूब संग्रह करके रखे। रूपा जी देशा के दूसरे श्लोक में लिख रहे हैं अक्सर लोग अपने पोतों के लिए परपोतों के लिए भी रखे जाते हैं कि आगे वाली सात पीढ़ियां चलती रहती, तो वो भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको अलाउड, उनको क्या है जो फॉर्मूला है 25% इमरजेंसी के लिए, 25% अपने रिश्तेदारों के लिए, 50% वैष्णवों के लिए, नेट इनकम को संग्रह किसी को अलाउड नहीं, अत्याहार प्रयास दोनों ही। Yes,
इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि गीता मैराथन हुआ है, बोले खोटे सिक्के दे दो, नए सिक्के नहीं हमारे पास, तो ये दान जो खोटे सिक्के देने का दान था उस दान को क्या समझा जाए? फिर तो प्रभुपाद जी से कह दे कि हमने तो खोटे सिक्के बहुत चलाए हैं, अब जैसे खोटों को भी तू धक्का लगवा देना भाई, जैसे बारह होता है तो खोटे सिक्के इस समय
ठीक बात है, ठीक बात है, लोगों ने कहा कि पुराने नोट इतने चाहिए ले जाओ कहीं तो ऑफर भी आए कि आप थोड़ा रख लीजिए बाकी नए नोट दे दीजिए वो सोचे कि मंदिर में हर तरह की बातें होती होंगी, तो ठीक है, मानसिकता की बहुत पर निर्भर करता है कि इस मानसिकता ने अपने दान दिया है, और कई लोग थे ऐसे जिन्होंने खुल के नए नोट भी दिए और निश्चित रूप से उनको ज्यादा कृपा मिलेगी,
लेकिन उनका भी दान नहीं कर रहा,
अगर वो भगवान की सेवा में लग पाया, अगर भगवान की सेवा में नहीं लग पाया फिर कैसे ऐसे। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, गौर प्रेमानंद।